हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है ये अपने आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। हर एक भाई बहनों को ये विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ईश्वर की कृपा से इस मनुष्य के शरीर में आए हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने आत्मा का शीघ्र उद्धार करना, किंतु हम लोग इसके विपरीत चलते हैं, ये हमारे लिए खतरे की बात है। हम लोगों को अपनी सब प्रकार से उन्नति करनी चाहिए और वो उन्नति मनुष्य शरीर में हो सकती है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि त्रिक योनि में नहीं, देव योनि में भी वो उन्नति नहीं हो सकती जो मनुष्य योनि में हो सकती है। और वह मनुष्य का शरीर हम लोगों को प्राप्त है ऐसा समझ करके सब प्रकार से अपनी उन्नति ऐसा करनी चाहिए। आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारी सारी क्रिया परमात्मा के ही लिए होनी चाहिए, या परमात्मा की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, परमात्मा के मां प्रेम होने के लिए, प्राप्ति होने के लिए, कल्याण होने के लिए जो कहा जाता है उसका सबका मतलब एक ही है। कल कुछ उन्नतियों के विषय में बात बतलाई गई थी, वे 10 उन्नतियां ये हैं। एक भौतिक उन्नति, दूसरी शारीरिक उन्नति, तीसरी इंद्रिय उन्नति, चौथी मानसिक उन्नति और पांचवी बौद्धिक उन्नति, छठी जो है व्यवहारिक उन्नति, सातवीं सामाजिक उन्नति, आठवीं नैतिक उन्नति और नौवीं धार्मिक उन्नति और 10वीं पारमार्थिक उन्नति जिसको आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। हम लोगों को हमारी जितनी क्रिया है सब भी एक प्रकार से आध्यात्मिक ही होनी चाहिए और सब प्रकार की उन्नति के साथ में परमार्थ का संबंध जोड़ देना चाहिए। इसलिए सभी पारमार्थिक उन्नति के मां समावेश हो सकती है। एक तो हर वक्त भगवान को याद रखना और सारी क्रिया जो हमारी हो उसके मां स्वार्थ का त्याग करना, मानव सारी हमारी क्रिया निष्काम भाव से होनी चाहिए और उद्देश्य अपना ये कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, या यूं कहो कि आत्मा के उद्धार के लिए होनी चाहिए। उद्देश्य जो है परमात्मा की प्राप्ति, क्रियाओं के बीच के मां निष्काम भाव और हर वक्त भगवान के स्वरूप की स्मृति, ये तीन बात कायम रहने से हमारी सारी जो क्रिया सारी जो चेष्टा है सो परमात्मा की प्राप्ति देने वाली हो जाएगी। भौतिक उन्नति से मतलब है कि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन भूतों की वास्तविक उन्नति हो जिससे संसार की उन्नति हो। संसार के हित के लिए भूतों की उन्नति करनी चाहिए, न कि अपने शरीर पोषण के लिए या स्वार्थ के लिए। भारद्वाज ऋषि आदि में जो सिद्धियां थी और भी बहुत सारा जो सिद्धियों का प्रकरण आता है ये सब भौतिक उन्नति के ही अंतर्गत है। वर्तमान के मां जिसको वैज्ञानिक उन्नति कही जाती है, जिसका नाम साइंस विषय की उन्नति कही जाती है, वो सब उसके अंतर्गत आ जाती है। शारीरिक उन्नति उसका नाम है कि हमारे शरीर का जो संगठन जो है ऐसा हो कि जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक। सात्विक भोजन करने से आयु आदि की जो वृद्धि है आरोग्यता की वृद्धि है, प्रसन्नता की वृद्धि है, शरीर में सात्विक भावों की वृद्धि है, ये सब एक प्रकार से समझो कि सात्विक भोजन करने से, व्यायाम करने से, दूध आदि का सेवन करने से, जो सात्विक पदार्थों का सेवन करने से जो हमारा शरीर जो एक प्रकार से आरोग्य रहता है, पुष्ट रहता है, और शरीर के मां मन बुद्धि इंद्रियों के मां जो बल है वो सात्विक बल हो गए, वो सात्विक जो एक प्रकार से थी अपने बल है, वही बल परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, वही असली उन्नति है। तामसी भोजन करके के मांस वगैरह खा करके जो शरीर की पुष्टि है, वो शरीर का बल भी तामसी है और वो क्रिया भी तामसी है, उसका फल भी तामसी है, वो मर के घोर नरकों में जाता है, वो उन्नति वास्तव में उन्नति नहीं है, वो अवनति है। उन्नति तो वही है जो वस्तु के बीच के सात्विक को आत्मा के कल्याण में सहायक हो, नहीं तो पतन है। इसी प्रकार से इंद्रिय उन्नति होनी चाहिए, इंद्रियों की उन्नति, इंद्रियों की उन्नति उसका नाम है कि इंद्रिया हमारी दिव्य होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को समझो कि सब बात का ज्ञान हो जाए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, इसी प्रकार से थी हमारे नेत्रों की शक्ति, कर्णों की शक्ति, ये सब दिव्य होनी चाहिए। उस दिव्य शक्तियों से हमको परमात्मा के विषय का ज्ञान बढ़ाना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के बीच में उनको लगाना चाहिए, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भौतिक उन्नति और शारीरिक उन्नति और इंद्रिय उन्नति का विषय कल विस्तार से कहा था, इसलिए इसका आज विस्तार नहीं किया गया। मानसिक जो उन्नति है इसके विषय में भी कुछ कहा गया था और फिर कहा जाता है। मन विषय की जो उन्नति है वो मानसिक उन्नति है। मन जो संसार के विषय भोगों की तरफ जाता है, इसको रोकना, इसको अपने कंट्रोल में करना यानी अपने वश में करना और इसको स्थिर करना और इसमें बल बढ़ाना, मन का जो बल है वो आत्म बल है, मन को शुद्ध बनाना, मानसिक जो सिद्धियां हैं वे सब अध्यात्म विषय में हानिकर है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं। यदि अपने आप ही आकर प्राप्त हो जावे तो उनको भी अध्यात्म विषय में लगा देना चाहिए। जैसे कपिल देव आदि के बीच में जन्म से ही ये सिद्धियां थी और उन्होंने अपने उनका सदुपयोग किया, मानसिक सिद्धियों को एस आराम में लगाना, मान बड़ाई प्रतिष्ठा में लगाना ये खतरे की चीज है और आत्मा के बीच के में बाधा पहुंचाने वाली सिद्धियां हैं। तो ये मानसिक सिद्धियां किसका नाम है, कल आपको बताया था, प्राप्ति प्रकाम और ऋषित्व वशित्व, जिस चीज की हम इच्छा करें वो आकर यहाँ प्राप्त हो जाए उसका नाम प्राप्ति सिद्धि है। प्रकाम उसका नाम है कि हम यहाँ बैठे कोई मन के मां कामना कर ले और उस कामना की सिद्धि हो जावे। ऋषित्व उसका नाम है कि हम ईश्वर के समान संसार की चीजों की, संसार के पदार्थों की, प्राणियों की रचना करने की शक्ति आ जाए। बसित तो उसका नाम है कि चाहे जिसको मैं अपने अधीन कर ले, मैं बस में कर ले। इन सिद्धियों का प्रयोग भी हम परमार्थ विषय में करें तो परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है, किंतु ये कठिन बात है, तीव्र वैराग हुए बिना ये संभव नहीं है। स्वाभाविक की मान बड़ाई प्रतिष्ठा की तरफ मन झुक जाता है, इसलिए ये खतरनाक हो जाती है। अतः इसके लिए विशेष चेष्टा नहीं करके कि मानसिक उन्नति अपने आत्मा के कल्याण के लिए करनी चाहिए। मन में एक तो ये दोष है, चंचलता का दोष है, तो मन को स्थिर करना चाहिए। एक जो मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस में नहीं है, इसलिए इसको बस में करना चाहिए। एक मन जो है अपवित्र है, इसलिए उसको शुद्ध बनाना चाहिए। इसको शुद्ध बनाने के वास्ते हमारे भीतर के बीच के मां जो दुर्गुण और दुराचारों का जो समूह है उनका विनाश करना चाहिए। दुर्गुण माने दुर्भाव, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सरता, घमंड, राग द्वेष, अनेक प्रकार के जो दोष भरे हुए हैं उनका नाम मल दोष है। उससे हमारा मन मलिन है। और दुराचार, दुराचार जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मद पीना, मांस खाना, जुआ खेलना आदि अनेक प्रकार के जो पाप शास्त्रों में बताए गए हैं उनका नाम ही दुराचार है। उससे ये संस्कारों के कारण से मन है सो मलिन है। और दुर्व्यसन जैसे व्यर्थ काम करना, निद्रा, आलस्य, प्रमाद करना, और जैसे चौपड़ताश खेलना, थिएटर तमाशा, बाइस्कोप आदि देखना, और भी जो एक प्रकार से अपना समय सो व्यर्थ बिताना, फालतू बातें करनी, जैसे प्रमाद है, फालतू बातें करनी वाणी को प्रमाद है, फालतू चिंतन करना मन को प्रमाद है, फालतू चेष्टा करनी शरीर को प्रमाद है, 6 घंटा से अधिक सोना आलस को दोष है, तो ये सब अंतकरण के वहां मल के नाम से कहे गए हैं। और भी जैसे मादक वस्तु का सेवन करना, बीड़ी, सिगरेट, पान, एक प्रकार से पान का एक व्यसन जो है वो कोई पान दोष, पान का खाना दोष नहीं है किंतु व्यसन तो है ही, चाय पीना एक व्यसन तो है ही, और भांग पीना, तम्बाकू खाना पीना इत्यादि के जितने जो समझो कि व्यसन है ये भी सब एक प्रकार से हमारे लिए पाप के ही समान है। पाप न होते हुए भी उनको भी पाप के समान, विष के समान समझ करके, मृत्यु के समान समझ करके इन सब का कतई त्याग करना चाहिए। हृदय के भीतर में जो जन्म जन्मांतर से इकट्ठे हो रहे हैं इनका एकदम विनाश कर डालना चाहिए। इनके विनाश के लिए निष्काम भाव से परोपकार करना चाहिए। यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, दूसरों की सेवा है, पूजा है, सत्कार है, ये सब क्रिया निष्काम भाव से करने से इन दोषों का नाश होकर के अंतकरण शुद्ध होता है। भगवान का जो भजन है, ध्यान है, सत्संग है, इससे भी इनका नाश होता है। बल्कि भजन, ध्यान, सत्संग हम निष्काम भाव से करें तो इससे और भी शीघ्र नाश हो जाता है, क्योंकि ये उपासना है, जप है, ध्यान है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये उपासना का अंग है, तो इससे और शीघ्र अंतकरण शुद्ध हो सकता है। अंतकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव जो है बहुत उच्च कोटि की चीज है। निष्काम कर्म से भी अंतकरण शुद्ध होता है, फिर निष्काम उपासना से हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। मन में जो चंचलता का दोष है इसके नाश के लिए अभ्यास और वैराग सबसे उत्तम माने गए हैं। विषयों के मां जो आसक्ति है इस कारण से हमारी इंद्रियां और मन उस तरफ में दौड़ दौड़ करके जाते हैं आसक्ति के कारण से। आसक्ति का नाम ही राग है, और राग का जो अभाव है उसका नाम वैराग है। तो तीव्र जो वैराग है इससे कार्य बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है। तीव्र वैराग कैसे हो? संसार के जो पदार्थ हैं, भोग हैं, ऐश, आराम, विलासिता, सोखिनी, ये जितने जो एक प्रकार से भोग विषय के बातें हैं, इन सब के बीच के मां आसक्ति का अभाव। आसक्ति का अभाव का ये उपाय है कि ये सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, और दुख रूप है। अज्ञान से ये दुख ही सुख के रूप में दिख रहे हैं। जैसे पतंगे जानवरों को दीपक की शिखा सुख रूप प्रतीत होती है उसका वो काल साक्षात अज्ञान के कारण से थी, उनको उसमें सुख प्रतीत होता है किंतु उसमें सुख नहीं है। उसके नजदीक जाता है वो घुस करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से संसार के जो जितने विषय भोग हैं वह दीपक की शिखा के समान हैं, और उसमें कूद करके जो पड़ते हैं उनका जो उपभोग करते हैं वे जानवर हैं। वे एक प्रकार से थी समझो कि सलभ जैसे पतंगे जानवर हैं उसी के समान हैं। आरंभ के माँ तो उनको अमृत के सदृश ये सब भोग प्रतीत होते हैं, किंतु अंत के माँ ये विष के समान है। विष पान करने से जैसे मृत्यु होती है, इसी प्रकार से विष के सेवन करने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नर तनु पाय विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य के शरीर को पाकर के जो विषय भोगों में मन लगाता है वह मूर्ख अमृत के बदले में विष को लेता है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन जो है वो अमृत है, उसको छोड़ कर के संसार के विषय भोगों को भोगता है, वो जन्मता मरता रहता है। इस वास्ते ये महाविष है, विष खाने से एक दफा मरता है, विषयों के भोगने से जन्मता मरता ही रहता है, इसलिए इसका नाम महाविष है। इसलिए ये बात बताई गई विषयान विश्व तज विषयों को विष के समान तुम त्याग कर दो। अर्जुन ने गीता के छठी अध्याय के वहां 33 और 34 के श्लोक के बीच के वहां ये बात कही कि श्री कृष्ण जी से कि भगवान आपने जो योग की बात कही है और उसमें जो समता की बात कही है बड़ी उत्तम बात कही, किंतु मन के चंचल होने के कारण से उस योग को प्राप्त करना मैं कठिन समझता हूँ। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि असंशय महाबाहो मनोदुर निग्रह चरम अभ्यास कौनते वैरागण गृहते। हे महाबाहो, तेरा जो कहना है संशय रहित है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मन जो है ये चंचल मन जो है इसका स्थिर होना बहुत ही कठिन है, किंतु हे कौनते अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये भस्म हो सकता है। भस्म हो जाता है तो फिर हम इसको स्थिर कर सकते हैं। ये बात भगवान ने गीता की छठे अध्याय के 35 के श्लोक में बताई। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 12वें सूत्र में यही बात कही है कि अभ्यास वैराग्य अभ्यंगतन निरोध हो। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास क्या कि हमारा मन जहां जहां जा वहां से लेकर के परमात्मा में लगाना, यतो यतो निष्ठति मनस चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियमी तदात्मने प्रसंग नहीं। ये भगवान ने गीता के छठे अध्याय के 26 के श्लोक में जो बताया है ये अभ्यास है। ये चंचल मन जहां जहां जावे वहां वहां से इसको अपने अठा करके बारम्बार परमात्मा की मां लगाते रहना, इसका नाम अभ्यास है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन के मां दृढ़ अभ्यास के लिए कहा है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि स मान वह जो प्रयत्न तत्प्रसिद्ध यत्नो अभ्यास है, उनके बीच में स्थिति के लिए जो प्रयत्न है उसका नाम अभ्यास है। और वह प्रयत्न कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल तक और निरंतर जिसमें तार न टूटे और आदर पूर्वक जिसका सेवन किया जावे तो वो दृढ़ भूमि वाला अभ्यास बनता है। उस दृढ़ अभ्यास का नाम तीव्र अभ्यास है और उससे परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, महर्षि पतंजलि ने यह बात कही है कि तीव्र वेग वालों को आसन माने शीघ्र ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। उनके जो समाधि की सिद्धि और परमात्मा की प्राप्ति वास्तु के बीच में एक ही चीज है, मन को वश में करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए हमारे शास्त्रों के वहां बहुत से उपाय बतलाए हैं। ईश्वर की शरण से भी इस कार्य की सिद्धि हो सकती है। भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को कि तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारतो तत्प्रसादात परांग शांति स्थानं प्राप्सि शाश्वतम। उस परमात्मा की तू शरण जा, सब प्रकार से उसकी कृपा से परम शांति और अविनाशी स्थान को तू प्राप्त हो जाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर की भक्ति से भी चित्त की वृत्तियां को निरोध होकर के और समाधि की सिद्धि होती है। चित्त की वृत्तियां को निरोध होकर के समाधि की सिद्धि होनी उसका नाम मुक्ति है। इसी प्रकार से थी समझो कि और परम शांति अविनाशी स्थान की प्राप्ति ये भी मुक्ति का ही नाम है। तो मन को शुद्ध बनाना और मन को स्थिर करना और मन को वश में करना ये मानसिक उन्नति है। इस प्रकार के करने से मन के मां बल बढ़ जाता है, उसके मां समझो कि धीरता गंभीरता वीरता निर्भयता ये सब गुण आ जाते हैं। जिस पुरुष ने मन को वश में कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। जिसके मन वश में है उस संसार को भी वश में कर सकता है, ईश्वर को भी अपने अनुकूल बना सकता है, वश में कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को मानसिक उन्नति के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए। अब पांचवी उन्नति की बात कही जाती है जिसका नाम बौद्धिक उन्नति है। जो बुद्धि विषय की जो उन्नति है वो बौद्धिक उन्नति है। बुद्धि के बीच के मां ज्ञान बढ़ाना चाहिए। बुद्धि के मां बहुत से दोष हैं, उनकी निवृत्ति करनी चाहिए। एक बुद्धि के मां प्रधान आवरण का दोष है और वो आवरण का दोष दूर होता है परमात्मा के ज्ञान से। परमात्मा के विषय जो ज्ञान है उससे वो अपने आवरण का दोष दूर होता है। और वो परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है वो होता है ज्ञानी महापुरुषों का संग करने से। भगवान ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने ने सेविया उपदेख संति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दृष्टि ने। तत्मा ने उस ज्ञान को तू विधि माने जान किस प्रकार से थी। महात्मा जो पुरुष है उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके के उनकी सेवा करके उनकी आज्ञा का पालन करना ही उत्तम दर्जे की सेवा है। और निष्कपट भाव से प्रश्न उत्तर करके उस ज्ञान को तू जान। वे ज्ञानी जन तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो तत्वदर्शी जो ज्ञानी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो ज्ञानी है, ज्ञान के द्वारा जिनके सारे कर्म नाश हो चुके हैं, ऐसे जो महात्मा पुरुष हैं वे तेरे प्रति उपदेश करेंगे। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडित संग बुधा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सारे कर्म दग्ध हो गए हैं ऐसे महापुरुषों को जो कि ज्ञानी लोग भी अपने पंडित कहते हैं, ज्ञानियों में भी उसको श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे जो तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। यदि ऐसी बात कही तो ठीक है किंतु ऐसे महात्मा नहीं मिले तो फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति से भी अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाता है। भगवान स्वयं उसको ज्ञान दे देते हैं। ये बात भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 और 11 के श्लोक में बतलाई है। देशांग सतत युगता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयांतिते। प्रीति पूर्वकम माने प्रीति पूर्वक जो नित निरंतर मुझको हंसते हैं उनको मैं वे बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन पुरुषों के हृदय में स्थित जो अज्ञान है वो ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उसका उसके ऊपर कृपा करके उनको मैं विनाश कर डालता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने गीता के मां बतलाया है।